ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஹே சௌமியா, புருஷ சோடச கல சோல கலா வாலாய் சோழ பிரக்கால விபக்த ஹோக்கே அன்ன சே படக்கர் சோல கலா சர்வ இந்திர சமுதாய சோடச கலா இஸ்கோ கஹத்தே ஹேன். वही सारे इंद्रिय शरीर से समर्थ होकर के वही जीव होता है, दृष्टा श्रोता मंता होता है, सब क्रिया में समर्थ होता है. और अन्न भोजन करने पर ही समर्थ होता है, अन्न भोजन नहीं करने से असमर्थ हो जाएगा, कार्य करण संघात तो दुर्बल हो जाएगा. और मन जो वृद्धि है, मन स्थिर है तो मन बल से संपन्न होकर बलवान होते हैं. मन बल बड़ा बल होता है, दुर्बल भी मनोबल से बहुत कुछ कार्य कर लेता है. शारीरिक बल बहुत है किन्तु मन बल नहीं तो कुछ नहीं कर पाता है. साधन करने पर जब कुछ करता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है. जो थोड़े थोड़े साधन करने के लिए कहते हैं, कल जैसे बताया था, कुछ आगे जाने के लिए कुछ जो साधन करता है, जानता है कुछ दुर्गुण मेरे पास है, इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ नहीं पाता है. जो छोड़ देता है मनोबल बढ़ता है, आगे सोता मैं कुछ कर पाऊंगा. कल बताया था प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगाते हैं. विष्णु भगवान को, शिव भगवान को कहीं भोग नहीं लगाते हैं, किंतु खाने वाले उसको बनाकर खाते हैं. तो भोग लगाने के लिए अलग तो भगवान के लिए कुछ रखेंगे, अपने लिए चटापट बनाकर खाते हैं. किन्तु जो कुछ बनाए भगवान को पहले अर्पण करे, उसके बाद खाने, ये भक्त का ये कर्तव्य. भक्त मानने वाले अपन को बड़ा भक्त मानते, कहते हैं भक्ति करते हैं, किंतु प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं. कहते हैं हम भोग लगाते नहीं उसको, भोग तो दूसरे लगाते हैं. दूसरे क्या लगाते हैं? जो अच्छा बनाकर खाते हैं, अपने घर में कोई अतिथि आने पर अच्छा बनाकर अपने खाओ, उसे को सुखा दे दो, कुछ ऐसा नहीं होता है. अब भगवान के लिए अच्छा अपने बनाकर खाओ, भगवान को खाली उधर रख दो, कुछ मिश्री चीनी थोड़ा रख दो, इलायची दाना रख दो, थोड़ा किशमिश कुछ रख दो, अपने चटापटा बनाकर खाओ. अपने अतिथि आने पर ऐसा होता है, उनको किसमिश काजू दे दो, अपने चटापटा भोजन रोटी सब्जी बनाकर खाओ. तो ये यही प्याज लहसुन भोग नहीं लगता तो नहीं खाना चाहिए, मालूम है बहुत लोग. किन्तु बहुत लोग कहते, कितने लोग तो ऐसे झूठ बोलते, बोले बच्चे के लिए खाना पड़ता है, अपने छोड़ नहीं पाते, बच्चे का नाम ले लेते हैं. कहीं एक परिवार मंत्र लेते, मैं इसे बताया तो बोलते बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे दोनों बच्चे बड़े बड़े पढ़ते थे कॉलेज में. मैं कहा देखो ये दोनों तुम्हारे पिता माता प्याज लहसुन खाना चाहते हैं, तुम्हारे नाम लेकर के कहते बच्चे के लिए खा रहे, तुम बोलो तुम छोड़ पाओगे ना, नहीं तुम्हारे पास सामर्थ्य है ना, नहीं वो खुश होकर हम छोड़ देंगे. मैं कहा तुम छोड़ दो तो ये भी छोड़ेंगे. वो दोनों खे खुश हो गए, मंत्र लेने के आए थे, बड़े खुश हो गए दोनों. जो राजी होंगे मैं बोलो अभी तुम्हारे बच्चे के लिए तुम अभी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, अभी छोड़ दिए. लड़की एमए में पढ़ती, बोली क्या होता है उसके बिना भोजन हम बनाएंगे अच्छा बन जाएगा, टमाटर डालेंगे, अदरक डालेंगे, मसाला डालेंगे तो बहुत सा बनेगा, प्याज लहसुन के ना बनेगा. अब कुछ लोग तो आकाश को देखता, अरे प्याज लहसुन के ना भोजन कैसे बनेगा, बोले सब्जी बनेगी कैसे, क्यों बोले सब्जी तो गलेगी नहीं, जैसे कि कच्चा रह जाएगी. प्याज लहसुन नहीं डालो सब्जी से गले में, क्या प्याज लहसुन तेल नहीं डालो, खाली पानी देकर उबालो तो गलती नहीं, लाओ कोई सब्जी क्यों गर्मी नहीं हुई, तो फिर छोड़ना पड़ा. तो ऐसे कुछ लोग अपने तो खाएंगे, बच्चे का नाम लेते हैं, किंतु स्वयं नहीं खाओ, बच्चे को सिखाओ. एक पद पर आगे बढ़ने के लिए जान करके भी यदि नहीं कर पाए तो आगे कैसे बढ़ना है. अब करे थोड़ा, इतने कर लेने से तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा ये कोई नहीं कहेगा, किन्तु इतने भी नहीं, कोई पूछते इतने करेंगे तो क्या हो जाएगा. दृष्टांत बताया था, दो तीन सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर चार मंजिल के ऊपर पहुंच पाएंगे, और जाना है चढ़कर, इसे लिफ्ट नहीं तो चढ़ना पड़ेगा, चढ़ना पड़ता है. जिनके कभी लिफ्ट हो खराब हो गया तो चढ़कर जाना पड़ेगा, या नहीं जाएंगे जाना पड़ेगा. और दो तीन सीढ़ी चढ़े नहीं चढ़ेंगे सीधा कैसे पहुंचेंगे. तो इसी प्रकार कुछ तो कोई करता है, और ऐसे कितने लोग है छोड़ने के बाद इतने खुश होते हैं, बाद में कहते हैं बड़े खुश होते हैं. सत्व गुण बढ़ता है, सात्विक गुण से सुख आनंद और आत्मबल, मन इसको आत्मबल कहते हैं. आत्मा क्या कि आत्मा तो शुद्ध है, मनोबल को आत्मबल कहते हैं, मनोबल बढ़ता है. थोड़े मनोबल बढ़ता है तो आगे और बढ़ पाता है, कुछ करता है साहस होता है, सोचता हाँ मैं कर पाऊंगा और थोड़ा करूंगा और करूँ। कोई कहते कंठस्थ करने के श्लोक बताते हैं, कहते हमारा कंठस्थ नहीं होता, हमारा कंठस्थ नहीं होता। मैं कहा ये बीमारी है, ये हमारे भी थी, हम भी कहते हमारा कंठस्थ नहीं होता, कंठस्थ नहीं होता। व्याकरण जो कंठस्थ करना पड़ा, मैं कहा मेरा कंठस्थ नहीं होता। महाराज जी ने डांटा, क्यों नहीं होगा, कंठस्थ करो। बोले और एक महात्मा ने बताया, माला पकड़ो ऐसा जब पकड़ो, एक कोई सूत्र याद नहीं होता है, अदसो से दादू दो मह, अदसो से दादू दो मह, अदसो से दादू दो मह, इस मध्य उपपद्य समान आदि करने स्थान न्यपी मध्यम, एक माला जप करो, एक सूत्र लेकर कि पूरा एक माला जप करो, याद नहीं होगा। याद करने पर होता है नहीं, क्यों होगा। फिर मैं अष्टाध्यायी 4000 सूत्र कंठस्थ करके सुनाया, जब थोड़ा करने लगा थोड़े थोड़े, फिर बाद में साहस हो गया, हाँ कर सकते। पहले क्या है बीमारी जैसे कहते, नहीं मेरे तो साथ मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जो लोग श्लोक कंठस्थ नहीं करते इसे कहते हैं, और थोड़े करने के बाद फिर बाद में साहस होता हम कर सकते हैं, फिर करते हैं। कहते स्मृति शक्ति बढ़ जाती है, करे तो बढ़ती है, करने पर होता है। इसी प्रकार सन्मार्ग में थोड़े थोड़े आगे बढ़े तो मनोबल बढ़ता है, और मनोबल जिसके पास है, शरीर में दुर्बल होने पर भी शरीर मोटे तागड़े वाले कोई मनोबल वाला जीत लेता है, आगे बढ़ जाता है। ये चाहिए नायम आत्मा बल ही नहीं लभ्य का, वो बल कौन सा है, शारीरिक बल नहीं, यही मनोबल। अनात्मा के मिथ्या समझ लिया तो अनात्मा का तिरस्कार करना है, जो मिथ्या उसको छोड़ना है, ये नहीं है तो छोड़ो। ये जिसके द्वारा श्रेय मार्ग में चलने के लिए जो विरोध है उसका छोड़ना, यही बल है। ये छोड़ पाए, तिरस्कार कर पाए तो आगे बढ़ सकते हैं, इतने नहीं कर पाए तो आगे कैसे बढ़ना है। तो ये होता है बल होता है मनोबल, यही भोजन करते तो भोजन करो। पंच देखो अन्नमय मन समझाने के लिए पिताजी उसको कहते 15 दिन खाओ नहीं, नहीं खाओ। शिष्य को गुरु बताते हैं सीखना है तो 15 दिन उपवास करो, तो 15 दिन नहीं खाओ तो फिर हम तुमको सिखाएंगे। अब पानी पियो, पानी नहीं फिर से मर जाएगी, पानी पियो। मानस बल संपन्न होता है, और मन से कैसे होता है कितने बल देखो। स पंच दशाहनी नाशाथ है नुपसाद किम ब्रवीमि भो इतरी चह सौम्य जीवन शिशा मानी सहवाच नवे मां प्रतिभांति भो इति। 15 दिन नहीं खाया करके गया, अन्नमय मन समझ प्रत्यक्ष जानना चाहते हो तो 15 दिन नहीं खाओ, तो नहीं खाया छोड़ दिया। 16 दिन जब हुआ पिता के पास गया, पिता पूछते तो बोले बताओ क्या बोलू, बोले किम ब्रवीमि भो क्या बोलू, कहते बोलो तुम ऋचा मंत्र सुनाओ, यजुर् मंत्र बोलो, सामान्य तुमने वेद पढ़कर आया सुनाओ। सहवाच नवे मां प्रतिभांति हो, अभी कुछ याद नहीं होते है। 15 दिन कोई 2-3 दिन नहीं खाएगा तो 15 दिन खाने पर मरेगा तो नहीं, बोले कुछ वेद कुछ याद नहीं होते। फिर तम होवाच यथा सौम्य महो तो अभ्याहित एको अंगार खद्योत मात्र परिशिष्ट सियात तेन तथोपि न बहुदहे देव सौम्य थे षोडशाना कलानाम एका कलाति शिष्टा स्यात् तैतरी वेदान अनुभवस्य सानात मे विज्ञासीति। यथा सम्य महत्व अभ्याहितस्य बड़े अग्नि प्रज्वलित है, बहुत अग्नि कमते कमते बुझते बुझते अंत में थोड़ा एको अंगार एक अग्नि टुकड़ा अंगार खद्योत मात्र खद्योत जुगुन के समान थोड़ी अंगार है थोड़ी अग्नि है परिशिष्ट बचा है तेन तत्व भी न बहुत है उसमें बहुत लकड़ी डाल दो सब जला देगी हो थोड़ी अग्नि में डाल दो तो बुझ जाएगी बहुत जलने पर किंतु उसको यदि थोड़े घास फूस देकर अग्नि को बढ़ाए फिर थोड़े छोटे छोटे लकड़ी फिर थोड़े लकड़ी डालकर जलाए तो जलेगा बहुत बढ़ देगा न बहुत एवं समय थे षोडशाना कलाना एका कला अतिशिष्टा मन षोडश कल पुरुष बताया 15 दिन में 15 अंश चला गया एक अभी अंश तया इतर ही वेदान न अनुभव सी एक कला है कम जैसे थोड़े से जुगनों के जैसे अग्नि है तो बड़े बड़े लकड़ी को जला नहीं सकती है इसी प्रकार एक कला से तुम वेद को अनुभव नहीं करते स्मरण नहीं करते असान अथ अभी खाओ असान खाओ अथ मैं विज्ञान से फिर आगे मैं समझाऊंगा थोड़ी खाओ। सहा साथ हे नमुपसाद सहयत किंच पप्रचा सर्वम अप्रतिपेदे। फिर थोड़ी थोड़ी खाने लगा, फिर खाने के बाद जब थोड़ा सामर्थ्य आ गया, पिता के पास गया तो सह बोलो ऋग्वेद यत्किंच पप्रच सर्वम अप्रतिपेदे। ऋग आदि यजुर् मंत्र आदि उसका ग्रंथ अर्थ सब बता दिया, जो पूछा सब बता दिया। 15 दिन नहीं खाया तो बिल्कुल मन क्षीण हो गया। ये जो उपवास आदि करते ना, इसे होता है मन बहुत चंचल होता है, भागता है इधर पर इधर उधर, ध्यान करे बैठेगा तो मन भागता है। इसे बीच में थोड़ा उपवास जो करते हैं मन को दंड देते हैं, मन को थोड़ा शांत करने के लिए। थोड़ा उपवास रहने से अन्न कम होने से मन थोड़ा कम होता है, फिर थोड़े भगवान में मन लगेगा। प्राणायाम भी इसलिए करते हैं, प्राणायाम भी एक दंड है मन को, प्राणायाम करेंगे तो मन थोड़ा स्थिर होता है। उपवास में भी इसलिए थोड़े उपवास करने का अर्थ नहीं कि शुरू से ही बहुत खाने लगे, आज उपवास व्रत है करके शुरू से थोड़ा खाओ, फिर दोपहर में खाओ, फिर शाम को खाओ। जो लोग अन्न खाते हैं नहीं कर पाते, एकादशा हम कहते चलो 2 बार 3 बार पहले खाओ, अन्न भक्षण नहीं करो। और जो उपवास करते थोड़े समय रहे, भजन करे, समय थोड़ा खाली समय मिले, थोड़े साधारण भजन अच्छा होता है। सात्विक भोजन उपवास रहे थोड़े, फिर अन्न लिया, अन्न नहीं जो फलाहार लिया, दूध आदि पिया, फल खाया तो अन्न भोजन होता है। मन को क्षीण करने के लिए प्राणायाम उपवास ही सब साधन है। इसे व्रत आदि जितने सब हुए इसलिए मन को थोड़ा सात्विक बनाने के लिए, और भागता फिरता मन बहुत चंचल उसको स्थिर करने के लिए सब साधन है। तो भोजन नहीं करने से कुछ नहीं समझ पाया, और खाने पर सब धीरे बताने लगा। तम होवाच यथा समय महत्व अभ्यायित से एकम अंगारम खद्यत मात्र परिशिष्टम तम त्रिणी रूपा समाधाय प्राज्वले तेन तथोपि बहुधयेत। थोड़े जुगने के जैसे अग्नि टुकड़ा थी, उसमें बड़े बड़े लकड़ डालेंगे तो अग्नि बुझ जाती, कुछ नहीं जलाती। किंतु अभी यथा महत्व अभ्यायित से बहुत अग्नि थी, सब नष्ट होकर के थोड़ा अंगार खद्यत के समान था अग्नि। तम त्रिणेर उपसमाधाय, तृण घास चून थोड़ा पास में रख करके जलाओ, थोड़ी लकड़ी छोटी छोटी लकड़ी लगाओ, नारियल की छिला सुखा लगाओ, ऐसे करके जलाओ, फिर अग्नि लकड़ी जलाओ, फिर बहुत इतने थोड़े अग्नि से जला करके फिर बड़े बड़े लकड़ी जला देते हैं। कहीं मैची से थोड़े लगाते हैं, लगाने के बड़े लकड़ी कर मैची लगाने से नहीं लगेगा, छोटे छोटे करके लगाते हैं, कपड़े रखते, रुई रखते, कपड़ा नारियल की छिला रखा, छोटे छोटे घास फूस रखा, जलाया, फिर थोड़ी थोड़ी कर लकड़ी जलाया। खद्य तो मात्र वक्तने पर भी तीर्ण ही रूप समाधि, तीर्ण घास फूस दे करके तो जलाने पर बढ़ा करके प्राज्वले बहुत लकड़ी को जला देता है। तेना तत्व भी बहुत है, तो बहुत लकड़ी को फिर डालो, जितने डालते जाओ सब जला दे। इसी प्रकार एक कलाती उसको थोड़े थोड़े अन्न सेवन करने से फिर सब कुछ सामर्थ्य आ गया। एवं सम्यते षोडशानां कलानां एका कलाति शिष्टाभूत् सान्नेन उपसमाहिता प्राज्वाली तये तर्हि वेदाननुभवस्य अन्नमयं सोहि सौम्यमन आपमय प्राणस्तेजमय वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति। एवं सम्यते षोडशानां कलानां एका कला अतिशिष्टा, तुम्हारे जो 16 कला अवयव है, 16 अंश है, उसमें से एक अंश बची थी, 15 दिन नहीं क्या अतिष्ठा बची थी। सह अन्य उपसमाहिता, जैसे थोड़े अग्नि में घास आदि देकर तृण आदि डालकर जलाते हैं, ऐसे एक कला थी। फिर थोड़े थोड़े भोजन करने से फिर अग्नि कला बढ़ गई, फिर प्राज्वाली जैसे अग्नि पर जल जाती है, इसी प्रकार अन्न से और करके तया इतरी वेदान अनुभव थी। उसी कला से अभी बढ़ने पर क्षीण हो गई थी, अभी भोजन कर से प्राज्वालिता तो बढ़ गई। बढ़ने के बाद फिर उसमें वेद का अनुभव कर तो स्मरण कर तो जो कुछ ने बता दे तो अन्नमयम ही समय मन, ये मन अन्नमय होता है, अन्न से ही इसकी वृद्धि होती है, सामर्थ्य आता है, अन्न के बिना असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार प्राण आपमय है, वाघ तेजमयी इति तद हस्य, इस वाक्य से श्वेत को तो समझ लिया बीजज्ञ इति समझ आ गया। अब मन में ही अंतकरण में आत्मा का प्रवेश होता है जीव रूप से, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, जल में चंद्र का प्रतिबिंब होता है, इसी प्रकार जिस मन में जीव रूप से परमात्मा का प्रवेश हुआ वही मन हो गया अन्नमय तेजमय वाक में बताया। अब ये जीव हो गया इस रूप होने के बाद चिराभास विशिष्ट हो जाने से वही जीव शब्द से कहा जाता है, तभी कर्ता होता दृष्टा श्रोता मंता सब होता है। अब इसके लिए आगे बताते हैं उसको विवेचन करने के लिए चिदाभास क्या है, वस्तुतः चीज मन जीव आत्मा क्या है। उद्दालको हारुणि श्वेत केतुम पुत्रम वाच स्वप्नांतम में सौम्य बीजानी ही थी यत्रे तत्पुरुष स्वपीति नाम सदा सौम्य तथा संपन्नो भवति स्वम अपि तो भवति तस्मादेनम स्वपीति त्याचक्षते स्वम यपि तो भवति। उद्दाल के नाम आरुणि अरुण का पुत्र आरुणि, श्वेत के तथा आरुणि का पुत्र आरुणेय, पिता का नाम है आरुणि उद्दालक, श्वेत के पिता के पिता दादा का नाम क्या है अरुण, अरुण होने के कारण उद्दालक का नाम हो गया आरुणि, आरुणि का पुत्र है श्वेत केतु। पुत्र को कहा आरुणि पिता ने स्वप्नांत में समय भी जानी ही, मैं अभी बता दू मेरे से स्वप्नांत को जानो, सपने का अंत सुश्रुति को समझो, स्वप्न स्वरूप समझो, सुप्न के अंत में सुश्रुति को समझो। यत्र एतत् पुरुष स्वपित नाम, इसका नाम स्वपित हो जाता है, गाढ़ निद्रा में सो जाता है, सब कहते हैं आई एम स्वपित सो गया, उसका नाम स्वपित कहते हैं, गौण नाम है। सता सम्य तथा संपन्न भवती तत्सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, सम अपित होती अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, तस्माद एनम स्वपीति आचेक्षते इसे सब लोग कहते सोया हुआ स्वपीति इसे कहते, क्योंकि स्वामी अपित होती अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। एक तो बिंब प्रतिबिंब स्वरूप समझना और एक जागृत स्वप्न सुश्रुति, तीन अवस्था में जाने वाला बृहदारण्यके में आया था, तीन अवस्था में स्थित है, तीन अवस्था से विलक्षण है आत्मा, उसको समझना। ये जागृत स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था का विवेचन करने से तीन अवस्था को जानने वाला एक ही चेतन जागृत अवस्था में है, स्वप्न दर्शन करता है, सुश्रुति में रहता है, फिर जिस स्वप्न को आता है, इसको विचार करने पर वास्तव स्वरूप क्या है आत्मा का, मैं कौन हूं, विचार नहीं करने पर तो मैं कहकर सबको मालूम है, नाम बता देंगे और अपने को दिखा देंगे अपने शरीर में हूं, किन्तु जब विचार करते हैं स्वप्न में हम जाते हैं, ये जागृत शरीर नहीं रहता है, उस समय का अल्पकल्पित शरीर बनता है जिससे व्यवहार करते हैं, ये जागृत शरीर केवल नहीं जागृत प्रपंच कुछ नहीं रहता है। आत्मा के साथ यदि जागृत प्रपंच का किसी का कोई संबंध वास्तव संबंध होगा, अग्नि आए प्रज्वलित तो अग्नि को लेकर जाएंगे उधर लेकर रखेंगे तो अग्नि ठंडी हो जाती है गर्म रहेगा, अग्नि का स्वभाव है इधर से उधर बर्फ है वहां लेकर इधर क्या, अब पिघले कर खत्म हो जाए लगा बर्फ है तो ठंडी रहेगी, अग्नि जबते है तो गर्म है उनका स्वभाव है। यदि आत्मा में संसार सुख दुख संबंध संसार है, जहां जाने पर संसार रहना चाहिए स्वभाव रहना चाहिए, जागृत प्रपंच का क्या जाता है स्वप्न अवस्था में, कुछ नहीं, वो जो सूक्ष्म सर मन में वासना है उसे स्वप्न बन जाता है और स्वप्न में कुछ ना कुछ बना देता है, भिखारी राजा सम्राट बन गया इंद्र बन गया और सम्राट भिकमंगा बन गया कुछ ही बना देता है। तो ये जागृत से स्वप्न इसको कहते पंचदेश में से बताया अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, स्थूल देह का भान नहीं होने पर अभान स्थूल देह से स्वप्ने यद भान आत्मन, स्वप्न में स्थूल देह का भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है स्वप्न दृष्टा रूप से, वो हो गया आत्मा का अन्वय और स्थूल देह का व्यतिरिक हुआ, स्वप्न अवस्था में स्थूल देह का अभाव हुआ और आत्मा का अन्वय हुआ, क्योंकि आत्मा स्थूल देह का भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है स्वप्न में, इसलिए आत्मा का हो गया अन्वय। सुषुप्ति अवस्था में ना तो स्थूल प्रपंच का भान होता है ना तो स्वप्न प्रपंच का भान होता है, सूक्ष्म का सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं होने पर भी आत्मा का भान होता है सुषुप्ति के साक्षी रूप से, सुषुप्ति के साक्षी रूप से आप रहते हो सुषुप्ति अवस्था में, कभी किसको संशय होता है पता नहीं चलता है सुषुप्ति अवस्था में रहता हूं या नहीं रहता हूं, ऐसा होता है सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, तस्वश्रुति के साक्षी होकर कहते न किंचित अभिदीशन। तस्वश्रुति अवस्था में हम थे तो आत्मा का अन्वय जागर स्वप्न सुश्रुति तीन अवस्था में होने पर भी व्यतिरिक हो गया स्थूल शरीर का प्रपंच का सूक्ष्म प्रपंच का और कारण शरीर है अज्ञान सुश्रुति अवस्था में समाधि अवस्था में उसका भी भान नहीं होगा। अन्य व्यतिरिक युक्ति के द्वारा ही समझना जिसका अन्य सर्वावस्था में है वही सत्य वही आत्मा है जिसका व्यतिरिक अभाव हो जाता है वो आत्मा नहीं अनात्मा है परिच्छिन्न है मिथ्या है तो मिथ्या है। भगवान गीता में कहते हैं नाश तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। इतने में एक आधा पाद है ना भाव विद्यते सतः सतः अभाव न विद्यते सत का अभाव नहीं होता है असत का भाव नहीं असत्य बंध्या पुत्र शशि विषाण वो किस समय उसका भाव होता है कभी भाव नहीं। और जो रज्जु सर्प किस समय रहता है भ्रांति काल में रहता है सर्प दिखता है भ्रांति काल में नहीं रहता है मिथ्या प्रपंच दिखने पर भी नहीं रहता है इसी प्रकार और ना भाव विद्यते सतः सत का अभाव न विद्यते कदापि न विद्यते कुत्रापि न विद्यते सत का अभाव कभी नहीं कहीं भी नहीं। क्या कहा भगवान ने ना भाव विद्यते सतः जोर से बोलो ना भाव विद्यते सतः सतः का तो सत का अभाव न विद्यते कभी नहीं होता है। यदि किसका अभाव हो जाता है उसको सत कहेंगे सत का अभाव होता है भगवान ने बता दिया सत का अभाव नहीं होता है जिसका अभाव होता है वो सत है। सत का कहां अभाव होता है कब अभाव होता है जिसका अभाव कहीं भी हो जाए कभी भी हो जाए वो सत होगा। हाँ इसमें कोई क्वा ममत्व मुमुक्षु नाम अनिर्वचनवादी नाम ममता नहीं करना है मुमुक्ष है तो जिसका अभाव कभी हो जाता है कहीं हो जाता है वो सत नहीं मतलब वास्तव नहीं पारमार्थिक नहीं है। हमको सत्य लगता है ये ठीक है भ्रांति काल में रज्जु में सर्प लगता है अभी सामने नहीं तो भी कहते सत्य सत्य है कहते सर्प भ्रम काल में तो सत्य है भ्रम काल में भी सत्य नहीं सत्य ही नहीं हमको लगता है किंतु भगवान क्या कहते हैं ना भाव विद्यते सतः सत्य का अभाव नहीं होता है और जिसका अभाव होता है वह सत्य नहीं है। समुद्र सत्य है ना नहीं वास्तव्य ना नहीं यहां नहीं है यहां है समुद्र यहां इतने बोल रहे अभाव हो गया अब ऋषिकेश में है वहां तो बहुत बड़े हिमालय वहां है यहां है बॉम्बे में अभाव हो गया। इसी प्रकार एक एक विचार कर सूर्य चंद्र ब्रह्मांड सब का अभाव होता है प्रलय काल में नहीं रहता है जिसका अभाव होता है वो नहीं है सत नहीं है दिखने पर भी सत नहीं है जो सत नहीं किन्तु दिखता है ऐसा कोई पदार्थ है सत नहीं किन्तु दिखता है कौन है सब बंध्या पुत्र शशि विषाण नहीं सत नहीं किन्तु दिखता है शशि विषाण असत भी दिखता नहीं असत ब्रह्म को छोड़ करके रज्जु में सर्प वास्तव नहीं होने पर भी दिखता है दिखता है। मरुभूमि में जल वास्तव है दिखता है इसी प्रकार जो नहीं होने पर भी दिखता उसको कहते मिथ्या यद असत भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजाधिवत यद असत भाषमानम तन मिथ्या स्वप्न गजाधिवत यद असत नहीं होता इन पर भी दिखता है भान होता है तन मिथ्या नाभाव विद्यते सतः इसे क्या सिद्ध हुआ जिसका अभाव होता है वह सत नहीं सत नहीं होने पर भी यदि दिखता है उसको क्या कहेंगे मिथ्या स्वप्न गजाधिपत सपने में हाथी दस हाथी दिखा कमरे में कितने हाथी आए थे एक है? एक ही भी नहीं सत्य फिल्म कितने है स्वप्न काल में दिखता है ना नहीं नहीं होने पर भी दिखता है तो उसको मिथ्या कहेंगे मिथ्या कहेंगे सपने में हाथी मिथ्या है असत भाषमान नहीं होने पर भी दिखता है तो मिथ्या अभी समुद्र को मिथ्या कहेंगे या सत्य कहेंगे